ॐ सहनावतु सहनावतु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पहला श्लोक चैंट करते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत्। भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये तो इस तरीके से ये ओपनिंग पहले श्लोक में है। भगवान दक्षिणामूर्ति अपने जो गुरुदेव हैं, यहां हमको दिखा रहे कि गुरु को किस दृष्टि से देखना चाहिए। हम अपने गुरु को जिस समय देखते हैं तो उनको ज्ञानी की तरीके से देखते हैं। क्या ज्ञान है उनका, हमारी कैसी किस्मत है। कल का दिन कैसा होने वाला है, महाराज जी आगे हमारे भविष्य में क्या क्या है, बोलते हैं तुम्हारा भविष्य अंधकार में। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। अरे महाराज जी ऐसी क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारा भविष्य नहीं है क्योंकि तुम्हारा कोई पास नहीं है। ये भूत भविष्य वगैरह देखना ये वास्तविक गुरु का काम। एक जना हमको ट्रेन में मिला, उन्होंने जब स्वामी जी होते ना हाथ वाम बल के दीजिए से आगे बढ़ाया। महाराज जी जरा देखिए क्या जीवन में है। हमने बोला सॉरी हमको आता नहीं है, तो आपका विद्या नहीं आती। तो बोला अच्छा ठीक है। अच्छा महाराज जी कुछ हमारे जीवन में आप पहले बता सकते हैं क्या हुआ। बोला पास कोई हमको नहीं आता है। तो बड़े झंझाट में बोलते फिर आता क्या है। आपको भूत का भी नहीं पता, भविष्य का भी नहीं पता, आए कि महाराज जी। तो भी उसने श्रद्धा से जिज्ञासा से पूछा काहे के गुरु हैं। बोला भैया हम लोग जो है ना वो वर्तमान के गुरु हैं। वर्तमान में क्या कुछ विराजमान है ये तुमको जब जानना हो ना तो ये हमारा एड्रेस है, पधार जाना हमारे देश और तुमको बताएंगे कि वर्तमान में क्या कुछ है। इसी वर्तमान के क्षण में हमको ये सब जो दुनिया दिखाई पड़ रही है और सब चीजें दिखाई पड़ रही, इसकी गहराई में जाके इसकी सच्चाई जानना यही जीवन में असली काम होता है। हम जिस समय वर्तमान में दुखी हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तब जाके हम भविष्य में लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अभी तो जो है चल रहा है महाराज जी किसी तरीके से, लेकिन भविष्य में आगे तो कुछ उम्मीद है कि नहीं है। तो वही लोग भविष्य की उम्मीदें रखते हैं जो इस समय मन में संतुष्ट नहीं होते। यही मात्र हमारी ज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए, हमारे गुरुदेव हैं, वो गुरुदेव क्या जानते हैं। हम जब जब उनको देखते हैं वो सत्य में जगे हुए हैं। जो सत्य में जगे होते हैं तो गुरु की ये स्तुति है, गुरु का स्तोत्र है, गुरु की वंदना है। हम ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं जो कि उस अद्वैत में जगे हुए, नॉन डुअलिटी में जगे हुए, और जो एक ऐसी सत्ता में जगे हुए हैं जिस दृष्टिकोण से पूरी दुनिया वही एक ही दिव्य सत्ता है, कोई दूसरी चीज नहीं। और उन्होंने इस ज्ञान के लिए यात्रा चालू करी कि दुनिया को एक बड़ी गहराई से देखा। हम जब जब किसी चीज को बहुत ही गहराई से देखते हैं तो उससे हम ग्रो ओवर कर जाते हैं। बचपन में खूब खिलौने बढ़िया बढ़िया देखे खेले, लेकिन जब खूब अच्छी तरह खेल लो तो उसके उपरांत खिलौने से ऊब जाते हो, और फिर उसके उपरांत अगर कोई बोले कि चलो हम लोग खिलौने खेलते हैं, वो नहीं अब तुम खेलो, अब हमारा इस समय इच्छा नहीं हो रही, तो तुम ये वही व्यक्ति है जो खिलौने में पागल रहता था, बट नाउ ही इज ग्रोन ओवर। किसी चीज को जीवन में बहुत निकटता से देखने का अंजाम उससे वैराग्य हो। इसीलिए जब आप किसी चीज को देखने के वजह से बहुत निकटता से आपने किसी चीज को देखा है तब आपके अंदर उसके प्रति जो एक फैसिनेशन होता था, एक अट्रैक्शन होता था, वो खत्म हो जाता है। और यही बात दुनिया में सब चीजों के प्रति है। वैराग्य उसको बोलते हैं कि वो चीज हो या ना हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहां पे कोई खिलौने हो या खिलौने ना हो हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से कोई अनेकों प्रकार के वैभव हो जाए, कंफर्ट हो जाए, आराम हो जाए, संपत्ति हो जाए, ठीक है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज हमारे अंदर जिस समय पूरी दुनिया के बारे में आती है, दुनिया बहुत सुंदरता से प्रकट है, हमारे अंदर एक समय बहुत जिज्ञासा थी, आकर्षण था, उसके उपरांत इतना अच्छी तरीके से देखा इसको, क्या हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, आसार हो जाती दुनिया। इन्होंने किस प्रकार से देखा क्या जाना, लेकिन आज इनके लिए पूरी दुनिया ऐसे स्वप्नवत हो गई है। कोई मन के अंदर इस चीज के बारे में अब कोई राज नहीं रह गया, नहीं कोई द्वेष है, किसी से कोई द्वेष नहीं और किसी से कोई राग नहीं। वैराग्य शो करता है एक मैच्योर रिलेशनशिप, एक स्वस्थ संबंध। हम किसी को छोटा नहीं दिखा रहे हैं और किसी को सर पे भी नहीं बैठा रहे, जो जैसी चीज है देख रहे हैं और उसको गहराई तक देख रहे हैं, और सबको गहराई तक देखने पे सब लोग को बहुत ही इज्जत बख्श रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, साक्षात परमात्मा स्वरूप देख रहे हैं। एक हमारे स्वामी तपोवन जी महाराज से हमारे गुरुदेव के गुरु जी थे, उन्होंने एक रचना लिखी है बद्रीश स्तोत्र। एक आदमी बहुत ही दुखी था, अनेकों प्रकार की पीड़ाओं से युक्त था, उसको पूछ लो तो रोना चालू हो जाता था, ऐसा भयंकर पीड़ा थी। उसको देख के वो बोलते हैं, हे बद्रीनाथ भगवान आपको प्रणाम है। तो कोई बोलता है महाराज जी इसको आप बद्रीनाथ भगवान को देख गए यहां पे, वो बोलते हैं हाँ साक्षात हा हंत दुख कई शतशोथयोयम् क्लिश्यत्यहं तं बद्रीशमीडे। उन भगवान बद्रीनाथ को हम प्रणाम कर रहे हैं। कहते क्या देख रहे हो इसमें आप महाराज जी, ये रो रहा है बिल्कुल, अनेकों चीजों से अटैच्ड है, दुखी है। बोलते हैं कि ये जो फॉर्म का मैनिफेस्टेशन है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उसकी उथल पुथल हो रही होगी, लेकिन क्या तुम इसके सब अनेकों प्रकार के इस नाटक को किनारे करके इसको देख सकते हो? एक जीवित प्राणी है, एक लिविंग बीइंग है, उसमें लाइफ का मैनिफेस्टेशन है। हम चोलों को देख के ये जीवन भर बदल होते रहते हैं, इस प्रोसेस में उस लाइफ को हम भूल जाते हैं। जो जीवन तत्व विराजमान है उस जीवन तत्व को देखो, कैसा भी मैनिफेस्टेशन हो, कोई इंसान हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई फूल हो, कोई पत्ता हो, कोई पहाड़ हो, कोई नदी हो, कोई नाला हो, क्या तुम इन सब चीजों को देख के केवल एक जीवन तत्व देख सकते हो? इट्स जस्ट प्योर लाइफ मैनिफेस्टिंग इन सो मेनी वेरियस वेज। वो होता है डिवाइन, वो चीज होती है परमानेंट रियलिटी। तो जिन्होंने ऐसे देखा है दुनिया को कि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, निजांतरगतम, वो सब हमारे अंदर हो रहा है, ये दुनिया हमारे अंदर विराजमान। देखो यहां पर हम लोग को इस शब्द के द्वारा ज्ञान अज्ञान की कसौटी दिखाते हैं। जब हमको अज्ञान होता है तो हम दुनिया में हो, और जब हमको ज्ञान हो जाता है ना, ब्रह्म ज्ञान, तो दुनिया हमारे अंदर हो जाती है। यही क्राइटेरिया रखो, कभी भी पूछो भाई हां तुम दुनिया में हो कि दुनिया तुम्हारे अंदर है। अगर दुनिया तुम्हारे अंदर है तो निश्चित रूप से तुम एक चिन्मयी सत्ता हो गए हो। यू आर दैट इन्फिनिट लाइफ इनसाइड विच दुनिया एक लहर की तरह आ रही है, जा रही है। और अगर दुनिया के अंदर तुम हो तो तुम एक छोटी सी लहर हो जो इस सागर के अंदर आई है, थोड़े दिन रहती है और चली जाती। तो हमारे गुरुदेव तस्मयी श्री गुरु मूर्तये नमेदम, ये नमस्कार ये प्रणाम उनको है जिनके अंदर पूरी दुनिया है, जिनके अंदर दुनिया एक सपने की तरह दिखाई पड़ती है। और यही हम लोग अपने स्वप्न के बारे में भी कहते हैं, इसीलिए स्वप्न का एक दृष्टांत यूज करते हैं। कोई सपने में है कि सपने से जग गया है, कैसे पता लगे? अगर तुम सपने में यह अनुभव कर रहे हो कि तुम स्वप्न की दुनिया में खुशी या गम से युक्त हो, रात को सपना देखते देखते कोई वहां पे सांप आ गया या छिपकली आ गई, कुछ भी नहीं समझ। अगर रात को कोई ऐसा कोई प्राणी जो हमको नहीं पसंद है भाई, हमको डर लगता है उससे और हम भागने के चक्कर में, यहां पे कुछ लोग बैठे हैं जिनका स्पेसिफिक दृष्टांत है ये, उनको इससे डर लगता है, कुछ फोबिया है किसी तरह से बैठकर पुराना। अगर हम रात को ये सब देख रहे हो और पता लगे कि हम भागने के चक्कर में जुगाड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमारा सपना चल रहा है, हम स्वप्न में हैं। लेकिन जिस समय उसी चीज को देखते समय तुमको ये पता लगे कि ये सब तुम्हारे मन की एक कल्पना चल रही है, मन की एक केवल विचार का प्रवाह चल रहा है, ये तुम्हारे अंदर है, फिर हमको कोई चिंता नहीं होती, फिर वही व्यक्ति आराम से बैठा रहेगा। देन दिस वाज जस्ट अ थॉट, केवल एक विचार मात्र था, जग गए। जगने का लक्षण है कि वो पूरी सपने की दुनिया तुम्हारे अंदर है, सोने का लक्षण है कि हम उसके अंदर है, वो सब हमसे बाहर है और हम उसी के अंदर एक छोटे से प्राणी है। रात को सोने को सोना क्यों बोलते हैं भाई, कभी सोचा किसी ने? संता सिंह एक बार अपने घर में था तो वहां पे चोर आया, उसको चलो उठाया नहीं था, कहां सोना? वो बोलता है यार क्यों डिस्टर्ब करते, सोफा बड़ा है, सो जाके वहीं पे। रात को उठा के पूछ रहे कहां सोना है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। ये सोना इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि वो वाला सोना तो नहीं होता है, लेकिन एक शब्द कॉमन जरूर है, वो इतना सुकून देता है, इतनी शांति देता है, जैसे कि कोई वास्तविक धनवान हो गया हो। ये पूरी स्वप्न की दुनिया हमारे अंदर विराजमान है। आप ब्रह्मा जी की तरीके से स्वप्न के सृष्टा है, आप स्वप्न की दुनिया टिकाए रहते हैं अपने अंदर और स्वप्न पूरा हमारे अंदर समाप्त भी हो जाता है। जब आप स्वप्न की दुनिया के ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप को देख लेते हैं तो आप जग गए, और जब आप किसी और के द्वारा जो है ये अनेकों प्रकार की मुसीबतें दी जा रही हैं, कौन हमारे पीछे पड़ा है, कहां से आ गया ये दुष्ट, तो हम सो रहे हैं भी। ज्ञानी लोग पूरी दुनिया को इस नजर से देखते हैं, ये सदैव हमारे लिए भी जिज्ञासा का विषय था। ज्ञानी लोग देखते क्या है, कौन से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिए कि ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए? बोलते हैं ज्ञानी का मतलब यही है कि पूरी दुनिया को स्वप्न की तरह देख रहे हैं, सो इट्स नॉट देयर। और जब ये दुनिया को हमने ऐसे देख के अपनी नजरों से बाधित कर दिया, स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू एंटायर वर्ल्ड, तो जो अवशिष्ट रहता है इस प्योर एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट लाइफ, वो ही जीवन की सच्चाई है। तो ऐसे गुरुदेव को हमारा प्रणाम है। सेकेंड श्लोक में हम लोग अब एंटर करते हैं, वहां पर भी जगत के बारे में कोई शिक्षा दे रहे, तो उसको पहले स्टडी करा जाए। बीजस्यांतरिवां कुरो जगदिदम्, प्राण निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना। वैचित्र चित्रीकृतम माया वीव विजृंभयत्यपि महा, योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम्। श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम्। श्री दक्षिणामूर्ति, उन भगवान दक्षिणामूर्ति को हमारा प्रणाम है जो इस जगत के बारे में केवल ज्ञान ही नहीं रखते हैं कि यह मिथ्या है, लेकिन ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। इतनी बड़ी बात, हम अपने गुरुदेव को ऐसे नजरों से देखते हैं कि उन्होंने ही ये पूरी दुनिया बनाई है। बोलते हैं चलो दुनिया के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। ये जो इतनी अद्भुत सी सुंदर सी दुनिया है, इस दुनिया को हम लोग जानते हैं कि दिस इज अ क्रिएशन, एक सृष्टि है। और दुनिया जो कि एक सृष्टि है, सृष्टि मतलब किसी चीज से बनाई हुआ, किसी ना किसी ने बनाया ना। राम जी कैसे पता किसी ने बनाया, शायद किसी ने बनाया तो। बोलते इस दुनिया को देखो कितनी ऑर्डरली है, कैसी परफेक्ट है कि तुम यहां पे एक रॉकेट वहां जुपिटर में जाएगा, प्लूटो में जाएगा, तुम टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हो। इतनी लॉज जो है वो प्रेडिक्टेबल है, इतनी व्यवस्थित है, हर चीज यहां पे जो है वह समझी जा सकती। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट लोग बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने के लिए, इसको समझते हैं और इसके पीछे का कॉज समझना चाहते हैं। ये पूरी कॉज एंड इफेक्ट की पूरी कहानी है। हर चीज दुनिया में देखो वो इफेक्ट है किसी कॉज की। अगर हमारे दर्द हो रहा है तो डॉक्टर बोलता है कोई चिंता मत करो, देयर इज अ कॉज, वो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, हम ढूंढ लेंगे उसकी जड़ क्या है और हम उसका फिर समाधान करेंगे। ये जरा टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो और फिर उसके बाद हम लोग अभी जड़ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इट इज वेरी ऑर्डरली क्रिएशन। ये सब चीजें हो जो भी पूरी दुनिया दिख रही है, हमारे थॉट्स हैं, हमारा शरीर है, यहां पेड़ हैं, यहां पौधे हैं, हर चीजों के बारे में आप यहां पे विचार करके उसकी जड़ को जान सकते हैं। ये यहां पे जो है देखो ये फूल ऐसा है, अब गुलाब के पेड़ में ग्राफ्टिंग करी जाती है, उसके अंदर जो है ऐसी जड़ क्रिएट कर दी जाती है कि लाल गुलाब देख रहे हो ना, हम इसको पीला कर देते हैं, तो पीले वाले गुलाब की ग्राफ्टिंग कर देते हैं और उसके बाद यहां पे वो पीला हो जाता है। एक बार हम औरंगाबाद गए थे, वहां पे एक पेड़ में 7 प्रकार के गुलाब के फूल लगे थे, एक पेड़ वो उसकी पूरी नस पहचान गए कि इसके अंदर कोई रंग का गुलाब उत्पन्न करने का क्या रहस्य है, अपनी मनमर्जी से। एक आम के पेड़ में 4 वैरायटी के आम लगे हुए हैं, नेचुरली नहीं होता लेकिन उसकी जड़ समझ में आ गई उनको, और वही जड़ समझ में आ गई, कॉज समझ में आ गया, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। पूरी दुनिया ऐसी है कि यहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। एक दिन ये दुनिया जो है वह केवल एक मन के अंदर किसी के विचार था, और फिर जो भी उसका कॉज था वहां से कहानी चालू होगी ना, जो भी कॉज था वहां से ये कहानी चालू हुई और पूरा ये एक वृक्ष की तरीके से सुंदर दुनिया प्रकट हो गई। इट्स कॉमन सेंस। तो बोलते हैं कि ये दुनिया की कहानी ऐसी है कि बीज स्यांतरिवांकुरः जगत इदम्। ये पूरा जगत ऐसा है जैसे एक बीज में से अंकुर प्रस्फुटित हुआ है। बीजस्य अंतः अंकुरा, एक छोटे से बीज में से आपने बीज बोया। अब बीज हम लोग जो है कई बार स्प्राउटेड बीज भी खाते हैं ना, पता लगा कि वो आग दाल वाल थोड़ी सी गीली करके कपड़े में लगा दी, चना लगा दिया और वो अंकुरित हो गया। अब जब ये यहां पे अंकुरित होता है उस बीज में पूरा सामर्थ्य होता है कि विशाल वृक्ष को खड़ा कर देता है। जस्ट इमेजिन, एक छोटे से बीज को आप अंकुरित कर देते हैं तो इतना विशाल आपका वृक्ष, वट वृक्ष खड़ा हो जाता है। इट्स देयर ऑल इन द सीड फॉर्म। जैसे यह पूरा वृक्ष और फिर उसके अंदर जितने बीज निकलते हैं, हर बीज में से सैकड़ों पेड़ उसी हर बीज के अंदर पड़े हुए हैं। कैसी दुनिया को देखना चाहिए? जैसे कि देखा ना, ये दिवाली में अनार होता है, जैसे अनार में जहां आग लगाई तो कैसे उसके अंदर से चिंगारियां स्पार्कल्स निकलते हैं, बीज में से पेड़ निकलता है। ये हर चीज के अंदर से कैसी एक सुंदर दुनिया मैनिफेस्ट होती रहती है। एंड स्टार्ट्स फ्रॉम अ सीड, एक छोटा सा बीज होता है, और बीज रूप में जब वो होता है तो आपको पेड़ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई ऐसे विशेष मशीन बन गए, इक्विपमेंट्स बन गए कि हम उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को देख लें, पूरा उसके जेनेटिक प्रोफाइल समझ लें, तो हो सकता है हमको एक दिन उसके अंदर पेड़ दिखाई पड़े। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा पेड़ उसके अंदर विराजमान, और बाद में क्रिएशन के नाम पे एक बीज केवल अंकुरित हो रहा है। जब अंकुरित होता है तो देखो कितना बड़ा विशाल वृक्ष खड़ा हो गया। हर जगह ये भले पेड़ों में देखें, कहीं पशुओं में देखें, इंसानों में देखें, आपका परिवार, आपका परिवार आपके ही बीज से अंकुरित हुआ एक वृक्ष होता है। कितनी विविधता उसके अंदर होती है। इट स्टार्टेड जस्ट फ्रॉम अ सीड। ये बात दुनिया के बारे में देखो, और दुनिया को जिस समय तुम इस विविधता को देखो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल द वैरायटी व्हिच इज मैनिफेस्टेड। ये देखो, इसके प्रारंभ में केवल एक छोटा बीज था, और उसी बीज में से ये सब निकलता है। हम लोग पूरी दुनिया को एक दिन जो है, जब प्रलय हो जाती है ना दुनिया में, तो बीज ही रहता है, कोई दुनिया नहीं रहती। जैसे हमारी एक पूरी स्वप्न की दुनिया जिस समय नहीं थी, तो मन में केवल एक विचार मात्र था, इट वॉज लाइक अ सीड, और वो हमारी कोई ख्वाहिशें हैं। हमको जो है वह किसी चीज की बड़ी इच्छा थी, वो इच्छा एक बीज की तरह था, और वो बीज ऐसा प्रस्फुटित हुआ, ऐसा अंकुरित हुआ कि रात को सपने की दुनिया उस बीज ने बना दी। तो ये यहां पे आचार्य बोलते हैं कि जैसे एक बीज में से एक अंकुर निकलता है, जगत एकदम, ये जगत, जगत उसको बोलते हैं, दैट विच इज वैरायटी ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स, अनेकों प्रकार के नाम रूप प्रकट हो गए। ये जो यहां नाम रूप प्रकट हो गए हैं, आज ये मैनिफेस्ट हो गया है, ये पहले किस रूप में था? प्राग निर्विकल्पम बीजस्यां परिवांकुरः जगदिदम् प्राण निर्विकल्प हो। पुनः पहले जो है वो केवल एक निर्विकल्प रूप में था। निर्विकल्प रूप में मतलब आप उसी बीज को ले लो और देखो, उसमें कोई मैनिफेस्ट नहीं है, अनमैनिफेस्ट रूप में। हम लोग दाल खाते हैं, जिस समय दाल खाते हैं तो आपको पता लगा आपने एक दाल खाई कि पूरा जंगल खाया है, कितने बड़े दर्द खाए आपने उस समय एक दाल के बीच में। इमेजिन, हम जिस समय एक फल खाते हैं, फल के बीच जिस समय खा जाते हैं, तो उसके अंदर हमने कितने सारी चीजें खा ली, लेकिन वो उस समय निर्विकल्प रूप है, इस अनमैनिफेस्ट। तो हर बीज को बड़ी इज्जत से देखो भाई, हर बीज को एक दुनिया देखो। और यही नहीं है कि बाहर वृक्ष के बीज पूरी दुनिया का एक बीज विराजमान है, आपके मन के अंदर किसी भविष्य का बीज विराजमान, आपके मन के अंदर जो थॉट्स हैं वो स्वप्न की दुनिया का बीज है। एक आपके मन के अंदर इच्छा भविष्य का बीज विराजमान है। कैन यू इमेजिन योर थॉट, द पावर ऑफ योर थॉट्स। आपकी थॉट्स के अंदर एक पूरी दुनिया को खड़ा कर देने का सामर्थ्य विराजमान है। पूरी दुनिया हमसे उत्पन्न हो जाती है, इट इज जस्ट माई थॉट। लेकिन उस समय हमारे जब विचार मात्र आता है, इट इज हाईली पोटेंट, इट इज हाईली क्रिएटिव, पूरी दुनिया के गर्भ की तरीके से होता है। लेकिन हमको उस समय नहीं दिखाई पड़ता क्या क्या विराजमान। हम लोग अपनी थॉट्स को कितना लाइटली लेते हैं। कोई भी थॉट्स आ जाती है, कोई भी थॉट आ जाएगी तो ये समझ लो एक थॉट को तुमने नर्चर करा तो तुम्हारे भविष्य के निर्माण का ये बीज हो। किसी की किस्मत भगवान नहीं बनाते हैं, हमारे थॉट्स ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर्स आर सेइंग। इसीलिए अपने विचारों को तुम बहुत ही दृढ़ता से देखो, इज्जत से देखो। एंड यू कैन बी द मेकर्स ऑफ योर डेस्टिनी। तुम्हारे हर विचार इतने पोटेंट हैं कि वो भविष्य के निर्माण के लिए बीज होते हैं। हमारा आज जो है वो हमारे पिछले कल के विचारों का एक अंकुर प्रस्फुटित हुआ है। आज हम सब लोग जो हैं, हमने भूतकाल में ऐसी चाह रखी, ऐसी कोशिशें करी, और इसीलिए हमारा वर्तमान रूपी वृक्ष उसी का फल है। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम अ थॉट। और यहां पे पूरा आप भविष्य में जो चाहें आप कर सकते हैं। हम लोगों के शास्त्र बताते हैं कि जो भी आप भविष्य में चाहते हैं ना, अगर आप बहुत क्लियरली उसको देखिए, आपकी चाह बड़ी क्लियर हो, यू कैन टू जस्ट एनीथिंग। इतनी महान बात। यहां पे किसी जो है पंडितों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पंडितों को वो चक्कर लगाए जिसके अंदर बीज ही कंफ्यूज्ड है। जब बीज में ही कोई संशय है, प्रॉब्लम है, इसलिए जाके हम भविष्य के बारे में शंका रखते हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से मन में रखो, शंका मत करना, तुम कुछ भी बना सकते हो। तो ये हमारे मन के अंदर जब थॉट होता है तो उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इट लुक्स वेरी इनोसेंट, क्योंकि निर्विकल्प है। प्राण निर्विकल्पम। लेकिन उस एक विचार से, विच इज द सीड फॉर्म ऑफ द होल क्रिएशन, जैसे हमारे अपने व्यक्तिगत सपने में होता है, जैसे लाइफ के प्लान्स में होता है, वैसे ही बोलते हैं पूरी दुनिया के भी प्रारंभ में एक बीज विराजमान था। वो बीज भगवान के, ईश्वर के मन के अंदर था। किसके मन में था, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन मन में एक फितूर था, एक विचार था, एक भावना थी, एक इच्छा। और दैट इज परफेक्टली वेरी नॉर्मल। हम अपने लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियली उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि हर क्रिएशन प्रारंभ में एक विचार होता है। कोई आर्टिस्ट जिस समय कोई पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग जिस समय बन गई, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, क्या पेंटिंग बनाई है, और अनेकों जो है कला के पारखी लोग कुछ भी उसके लिए जो छवर कर सकते हैं, बोलते हैं कि आई एम रेडी टू बाई योर पेंटिंग, कितनी करोड़ों की है। हमारे वो जो हुसैन थे ना आर्टिस्ट, उनकी पेंटिंग करोड़ों में, और वो फकीर की तरीके से नंगे पैर चलते थे। इंदौर की थे वो, इंदौर की अभी भी गलियों में उनका घर बताया जाता है, ये देखो हुसैन का घर। आगे पैर जीवन भर रहे, बाद में देश से भाग गए हो तो विदेश में चले गए थे, नहीं कुछ और प्रॉब्लम हो गए थे, लेकिन उनकी पेंटिंग इतने प्यार से बनाते थे और बड़ी जान हो जाती थी, बेशकीमती हो जाती थी। जब वो बनाते हैं कोई भी पेंटिंग, बाद में कीमत हो गई है, बाद में सुंदरता है, बाद में लोग निहारने वाले हैं, पारखी लोग उसकी कीमत लगाने वाले हैं, उसकी मार्केटिंग होती है, खरीदार होते हैं सब, लेकिन इसकी कहानी कहां से चालू होती है? उनके मन के अंदर एक आइडिया से, एक आइडिया आता है और उस आइडिया को ही वो ही सिंसियरली बिलीव करता है और उस आइडिया को आगे मैनिफेस्ट करते हैं। उनके जो यहां कैनवास है और ब्रश है और कलर्स है, वो केवल उनके मन के विचारों को प्रकट करने का तरीका है, वे सिंपल टूल्स फॉर दैट। लेकिन क्रिएशन कहां हुआ? पहला क्रिएशन आर्टिस्ट के मन में होता है। आप जिस समय कोई लेख लिखते हैं, कविता लिखते हैं, फ्रॉम वेयर डज दिस स्टोरी स्टार्ट? From your own mind. आपके मन के अंदर एक विचार आता है और उसी विचार को आप आगे प्रकट करते हैं। That is the whole story of creation. Creation की कहानी एक विचार मात्र से चालू होती है और फिर धीमे धीमे manifestation का process. There are two stages of creation. Stage number one होता है, वो हमारे मन के अंदर एक विचार होता है, and that is the real creation. उस creation को कोई देख नहीं पाता है, लेकिन the truth is that is the real creation. आगे जो स्टेज नंबर टू होती है, आपके मन के अंदर जो विचार है उसका प्राकट्य होता है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है। और जब उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है तो ये पूरी दुनिया सामने देख पाती है, स्थूल रूप ले लिया है, नॉट इज अवेलेबल फॉर द आईज एंड इंद्रियाज ऑफ एवरीवन, सब लोग उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जानकार व्यक्ति ये जानता है कि कहानी मन से चालू हुई, किसी की, किसके मन से चालू हुई है ये ढूंढो। कहीं गए आपने, बहुत बढ़िया किसी ने डिश बनाई ऐसी अद्भुत लजीज, ऐसा भोजन बनाया गया, किसने बनाया? व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, हु इज द शेफ? शेफ को बुलाओ भाई, और उससे हम मिलेंगे, उसको पर्सनली थैंक्स देंगे। आई वॉन्ट टू मीट सच ए क्रिएटिव पर्सन, क्या आप उससे चीज बनाइए। और देखा जाए तो वो केवल उसके मन का एक आइडिया था, यू वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद दैट, और उसने दुनिया भर का एक प्रेजेंटेशन कर दिया। तो ये एक यहां पे बात इस श्लोक में रखते हैं, दैट वेन एवर यू सी द क्रिएशन, द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू अंडरस्टैंड एवरी क्रिएशन इज कि ये प्रारंभ में निर्विकल्प रूप से था, इट वॉज लाइक एन आइडिया, अनमैनिफेस्ट आइडिया, वो केवल मन के अंदर एक विचार था। इसीलिए एक अच्छा विचार करना हमारे लिए या किसी भी बच्चों के लिए, विचार अगर किसी के अच्छे होते हैं तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज तो कम से कम कंप्लीट हो, अ वेरी क्लियर, किसी ने बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग बना ली, कहां से आइडिया चालू हुआ था? पूरा आर्किटेक्चर उसके मन के अंदर एक विचार था, ही कुड सी वेरी विविडली, दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो जो आर्किटेक्ट है पूरी बिल्डिंग को अपने अंदर विजुअलाइज कर पा रहा था। अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि बिल्डिंग बनने से पहले वो 3D मॉडल दिखा देते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर तुम टहल के आ सकते हो, वहां चीजें देख सकते हो, छू सकते हो। बोलते हैं ये देखो बाया कमरा तो दरवाजा दिखाई पड़ता है, बाया चले जाओ तो चलते चले जा रहे हैं, अंदर वो सब दिखाई पड़ता है। तो ये यहां पे किसी के मन का बहुत क्लियर विचार होता है। अगर जीवन में कुछ भी करना हो तो तुम्हारा विचार पहले स्पष्ट होना चाहिए। हमको याद है जिस समय हम स्कूल में पढ़ते थे, एक किताब हमने देखी थी, उसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। बोला वाओ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, थिंक एंड ग्रो रिच, हम सोचे और अमीर हो जाए। हमने किताब पढ़नी होगी, उसको उन्होंने लाइब्रेरी से इशू करवाया और लेके गए अमीर बनने के प्लान सोचे थे कि कैसे विचार रखें। पूरे किताब में उस आदमी ने नॉर्मन हिल करके ऐसे कुछ ना होता, तो उस व्यक्ति ने उसकी किताब में लिखा हुआ था कि विजुअलाइज योर फ्यूचर वेरी क्लियरली। तुमको क्या भविष्य में चाहिए, तुम पहले फर्स्ट स्टेप में बहुत अच्छी तरीके से अपना भविष्य देखो, इतना अच्छी तरीके से देखो कि हस्ता मलक अवत यू कैन क्लियरली सी द डिटेल्स। दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे लेकिन तुमको देखना चाहिए। और एक बार तुम उसको अच्छी तरह विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, एंड यू फॉल इन लव विद योर क्रिएशन, तुमको बहुत अच्छा लगता है एंड यू हैव नो डाउट्स अबाउट इट, उसका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। पूरी कायनात तुम्हारे लिए सहयोगी हो जाएगी। और अगर तुमको शंका आ गई तो शंका में ब्रेक लग जाता है, वो तो हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बोलते हैं बस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर शंका आ गई क्या होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो जो नहीं होगा ना वही हो जाता है। तुमने सुना कोई एको पॉइंट के मजेदार किस्से? एको पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप जाते हैं, कस के आवाज देते हैं तो वो रिबाउंड करती है आवाज। तो कुछ लोग वहां गाइड्स होते हैं, तो वहां पे किसी कोई कपल आया, वो बोला कि भाई हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, तो बोलते हैं एक मिनट अभी हम पूछते हैं। वहां पे कोई है एक शक्ति है, बाबा जी बैठे हुए हैं, वो देवता बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं। और वो पूछता है कि ये इनकी शादी होगी कि नहीं, तो बाद में आवाज आती नहीं नहीं, नहीं। लास्ट में जो भी बोलते हैं ना उसको आवाज स्पष्ट आती है। और अगर उसे अपना काम बनवाना है, तुमने डबल उसको समझ बैठ रहे हो, बोले देखो भाई वो भगवान से आपको काम करवाना है, तो ठीक है देवता से प्रार्थना करते हैं। और कोई नाटक वाटक करा उसने जाके, फिर बोला कि इन दोनों की शादी नहीं होगी कि होगी, होगी होगी होगी। ये एको पॉइंट के ऐसे नाटक होते हैं, मजेदार चीजें होती है। अनेकों लोग इस तरीके से जो है लोग को बुद्धू बनाया करते, देवता लोग बैठे हुए वहां पे, पास होगा कि फेल फेल ये फिर होगा कि पास 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 पास। अगर हमारे मन में शंका आ गई कि ये पता नहीं हमारा भविष्य अच्छा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा तुम्हारा भविष्य। हमारा भविष्य नहीं अच्छा है कि अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। ऐसे ही होता है, जिसने शंका करी वो मर गया, जिसने श्रद्धा रखी वो पूरा हो जाता है। You have to believe in yourself. You have to believe in your goals. तो अपने सपनों के प्रति भरोसा रखो. नहीं स्वामी जी, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, यू नो, ऐसे हम थोड़ी कुछ भी सपना देख लेते हैं. तो फिर वहां पे तुम्हारा प्रश्न होगा, होगा कि नहीं? नहीं नहीं, तुम्हारी शंका ही तो तुम्हारी असंभावना बनाती है, और कुछ नहीं होता है. जो भी यहां पे दुनिया में जिसने सिंसियरली बिलीव करा है, उसने अपना काम कर लिया. क्या कोई सोच सकता था कि हमारा देश एक दिन साफ हो जाएगा? लेकिन किसी ने सोचा, किसी ने मन में बिलीव करा कि नो इट विल बी पॉसिबल. इंदौर के बारे में किसी ने एक वीडियो हमको शेयर करा है कि इंदौर का एक बंदा 25 साल पहले वो बाहर श्रीगंगापुर गया था. बीच बीच में हर साल आता है यहां पे, और अपने ही अभी रिसेंटली उसने संस्मरण सुना है. I could never believe इंदौर इतना साफ हो जाएगा. उसने यहां के कचरे का आलम था, रोड गड्ढों में रोड थी, रोड में गड्ढे नहीं थे, ऐसी हालत थी. ये हमको भी याद है, हम भी यहां पे जब आए थे तो किसी को बाहर ले जाने में एक बार कोई परिवार आया, हमने चलो मांडू होके आते. उस समय हमारे पास जीप थी, जीप में हमको मांडू ले गए. उसके बाद हमने कान पकड़ा कि हम किसी को घुमाने नहीं ले जाएंगे. ऐसी भयंकर रोडें थी कि एक गांव की रोडें अच्छी होती है, ऐसी दुर्दशा थी. लोगों की कहावत थी कि रात को तुम जिस समय गुजरात या महाराष्ट्र से आ रहे हो, जहां पे रात को गड्ढे चल होंगे, तो समझ लेना इतनी लग गया. ऐसी हालात खराब, लाइट नहीं आना, पानी नहीं आना, रोडें खराब, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, इतनी दुर्दशा थी. और ये शहर देश के अंदर सबसे क्लीनेस्ट सिटी होती कंट्री, कभी पावर कट्स नहीं हो रहे, रोडें इतनी बढ़िया हो गई कि अब उल्टा हो गया है. जब रोडें ग्रबो चल रहे हैं तो पता लग गया महाराष्ट्र आ गया है. अभी आदत हो गई, इतनी दुर्दशा हो गई है. यहां पे जलगांव अलगांव के साइड की रोडें बड़ी गंदी हो गई है. बट समबडी बिलीव्ड इन दैट, किसी ने मन के अंदर ये विश्वास करा. इसीलिए तो ये लोग हार गए, सब लोग को आश्चर्य लग रहा था. वो ट्रेजेडी है कि इतने सिंसियर काम करने वाले जिन्होंने काया कल्प कर दिया. राजनीति क्या क्या कर देती है कि अच्छे आदमी को किनारे कर दिया, आपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली. तो किसी ने सोचा, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने कॉन्फिडेंस से कि हम ऐसी रोडें बनाएंगे कि जहां पे आप बैठ के रोड पे भोजन कर सकते हो, जी साफ सुथरी रोड बनाएंगे. एंड ही डिड इट. तो किसी ने अपने मन में एक सोचा, एक विचार करा, देश को स्वच्छ करेंगे, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, देश की इज्जत बढ़ाएंगे, देश की संस्कृति को हम चरम पे ले जाएंगे. क्यों मन के अंदर विचार करता है, वहां से कहानी चल. तो यहां पे इस श्लोक के अंदर आचार्य बोलते हैं कि देखो, ये पूरी दुनिया भी जब आप देखो ना, शुरुआत में यह भी किसी के मन में एक विचार मात्र था, और वो उस स्टेज में इट वॉज निर्विकल्प. इट वॉज लाइक इन अ सीड वेयर तुमको पेड़ दिखाई नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं निर्विकल्प. निर्विकल्प मीन्स अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त रूप में था. और उसके बाद क्या होता है बोलते हैं, फिर देखो सृष्टि की कहानी उसके बाद ही चालू होती है. क्या होता है कि वहां पे माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम. ये दुनिया इतनी सुंदर, इसका चित्रण हुआ है इतनी विविधता है, इतनी वैरायटी है, विच इज जस्ट अमेजिंग। फूलों को देखो, फूलों को देखो, पक्षियों को देखो, जंगल में देखो, समुद्र को देखो, इंसानों को देखो, कितनी वैरायटी है, व्हाट अमेजिंग ब्यूटी देयर इज। ये सब ब्यूटी, ये सब विविधता किसी के मन का एक विचार था एक दिन कि हम ऐसी सुंदर दुनिया बनाएंगे। अपने आप तो कुछ भी नहीं हो जाता, इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेड फॉर्म। एक बीज रूप में था सब का, सब पूरी दुनिया एक बीज फॉर्म में परमात्मा के मन में थी। जिसके मन में थी वही हम परमात्मा बोलते हैं। लेकिन ये तो लॉजिकल नेसेसिटी है, कोई चीज भी मैनिफेस्ट हुई है ये पहले सीड फॉर्म में होनी ही चाहिए। सीड फॉर्म से मैनिफेस्ट होने की प्रक्रिया को यहां आचार्य बोलते हैं माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृत। ये टाइम स्पेस का कंटिन्यूम, देश काल कलना, देश और काल से युक्त, देश और काल, टाइम एंड स्पेस। देखिए कितनी पुरानी रचना है, आपको पता है भगवान शंकराचार्य जी 2500 साल पूर्व थे, आज से 2500 साल बिफोर क्राइस्ट बीसी में थे वो कहीं। उस समय हाउ लेफ्ट एंड राइट इजीली टाइम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, देश काल, टाइम एंड स्पेस। जब टाइम और स्पेस का जो कंसेप्ट है आचार्य लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, इट वॉज अ सिंपल स्टफ। उन लोगों के अपने आपस में सब चिंतन होते हैं, विचार होते हैं, बोलते हैं ना, द होल कंटिन्यूम ऑफ टाइम एंड स्पेस इट स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग। उस बीज के अंकुर होने की प्रक्रिया में ये देश और काल का माध्यम से पूरी दुनिया क्रिएट। देश काल के बारे में तो आप लोगों को ज्ञान होगा शायद, दोनों चीजें देश और काल के अंदर दुनिया होती है। पहले देश और काल क्रिएट होता है, उसके अंदर ये दुनिया धीमे धीमे प्रकट हो जाती है। देश मतलब द स्पेस जिसके अंदर दुनिया है, और ये कितनी इंफिनिट स्पेस है। कभी रात को जो है आसमान में मुड़ के देखो, ये तारे कहां तक हैं? हाउ बिग इज द स्पेस? इन्फिनिट एक्सपांस। ये पूरा देश सामने जो है प्रकट है, और उसके अंदर काल, काल इज अनदर डायमेंशन, जहां पे भविष्य में क्या होना है, भूतकाल में क्या होता है, वो एक डायमेंशन। ये पहले क्रिएट होता है, बोलते हैं ये देश और काल माया से क्रिएट होता है। माया कल्पित देश काल कलना, तो एक ईश्वर की बड़ी दिव्य शक्ति है। और ये हम जब एक साइंस के स्टूडेंट थे, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते अनेकों चीजें फिजिक्स की और ये सब चीजें पढ़ते रहते थे। एक जो है यह माया की जो बात यहां कही जाती है ना, हमारे आज के आधुनिक साइंटिस्ट लोग भी इस चीज की चर्चा करते हैं। एक थ्योरी है हिसेनबर्ग्स थ्योरी ऑफ इनएक्सप्लिकेबिलिटी, एक बड़े अच्छे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक रहे, पूरी दुनिया का रहस्य जो है वो स्टडी कर रहे थे। बोलते हैं कि जब हम लोग पार्टिकल्स और वेव्स की स्टडी करते हैं, क्या को एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और एक समय जाके वो वेव बन जाते हैं। कभी वेव फॉर्म से एक्ट करते हैं, कभी पार्टिकल फॉर्म से एक्ट करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च करी कि ये कब वेव फॉर्म में आते हैं, कब पार्टिकल फॉर्म में आते हैं। तो फाइनली बोलते हैं कि एक ऐसी विचित्र शक्ति है जिसको हम कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। देयर इज अ शक्ति बिकॉज इट्स मैनिफेस्टिंग. हमारे सामने ये वेव आ रही है, कभी पार्टिकल रोक ले लेता है. बोलते हैं विद ऑल आर रिसोर्सेस इसको केवल इतना कहा जा सकता है, इट इज इनएक्सप्लिकेबल. इस इनएक्सप्लिकेबल को ही माया कहा जाता है. इस इनएक्सप्लिकेबल अनडिफाइनेबल शक्ति का नाम ही माया है. शंकराचार्य जी का ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि. उसमें उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी माया माया बोलते रहते हैं, क्या माया है? तो बोलते हैं दैट विच कैनॉट बी कैटेगराइज इंटू एनी कैटेगरी येट इट इज देयर. हाईली क्रिएटिव शक्ति. सन्नाप्य सन्नाप भी आत्मी कानो, भिन्नाप्य भिन्नाप भी आत्मी कानो, महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा. ऐसी जो शक्ति होती है जिसको आप ये भी नहीं कह सकते हो कि है, ये भी नहीं सकते हो नहीं है, लेकिन अमेजिंग शक्ति है, अमेजिंग क्रिएटिविटी है. इस माया शक्ति से ही ये क्रिएशन की विविधता बनना चालू होती. और माया जो है ना वो ठेकेदार होती है. प्लान बनाते आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट बना के प्लान दे देता ठेकेदार को, ये लो भैया नक्शा है अब बनाओ इसको. तो माया उस क्रिएशन को स्टार्ट करती है. देश स्पेस होना, उस स्पेस के अंदर सब चीजों का निर्माण होना, ये सब कहानी माया कल्पित देश काल करना. वैचित्र चित्री कृतम beautiful manifestation of all these things have started. Maya ऐसी चीज होती है जो कि कुछ यहां पे है नहीं तो देखने लगता है. तो ऐसी चीज होती है. एक हमने मजेदार कहानी सुनी थी. एक बार नारद जी भगवान कृष्ण के साथ कहीं घूम रहे थे, तो भगवान से पूछते हैं, भगवान आपकी तो बड़ी महिमा है, भगवान आपकी माया कैसी है? बड़ी विचित्र है वो, कई बार घुमा देती है, हमको अपनी माया के बारे में बताइए. तो भगवान बोलते हैं, नारद जी क्या करोगे हमारी माया, हमारे ऊपर ही ध्यान दो, भजन करो, आराम से आनंद लो. नहीं नहीं भगवान आपका तो भजन करते रहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपका तो चलता रहता है, आपकी माया के बारे में बताइए. तो भगवान बोलते हैं ठीक है नारद जी, बताएंगे कभी आपको. तो वो लोग दोनों जने जा रहे थे यमुना जी के तट पे, तो स्नान करने के लिए. तो जहां पे उन्होंने यमुना जी में डुबकी मारी, उन दिनों यमुना जी साफ हुआ करते थे, आजकल दुर्दशा हो गई है, अब तो यमुना जी को प्रणाम भी कर लेना, कभी डुबकी मत मारना. जब तक गंगा अभियान और ये सब अभियान पूरे नहीं हो जाते, होपफुली उस दिन हो जाए, अब बड़े सेफ हैंड्स में होने वाला है हमको लगता है. अब गडकरी जी के पास जो है ना गंगा सफाई अभियान चला गया है, यानी सच ए ग्रेट एग्जीक्यूटिव. देश का ऐसा काया कल्प कर दिया है एक बंदे ने. ये सब ऐसे लोग हैं जो विजन रखते हैं और विजन को इम्प्लीमेंट. वहां पे जो है वो यमुना जी में स्नान करने गए, तो दोनों जने डुबकी मारी, तो एकदम एक लहर आई और उस लहर ने जो है वो उनके पैर जमीन से उठा दिए. अब नदी के अंदर थोड़ा पैर हट जा तो बहाव में चलते रहते हैं, तो बहाव में नारद जी बहने लगे. किसी तरीके से हाथ पैर मार के उन्होंने फिर जमीन टटोली, देखा और ऊपर निकले तो दिखाई पड़ा भगवान कृष्ण है ही नहीं, दूर निकला है लगता है थोड़ा. तो किसी तरीके से बाहर निकले. जिस समय वो बाहर निकले तो वहां पे बच्चे लोग गांव के किनारे खेल रहे थे, सबने देखा, एकदम बड़े आश्चर्यचकित हो गए और भागे जल्दी से. नारद जी ने देखा कि क्यों ही उनसे डर के भाग रहे हैं, लेकिन सब भागे और गांव के अंदर चले गए. गांव से एकदम वहां के बड़े बुजुर्ग लोग बड़े माला वाला लेके आ गए और एक द्वार था उसके पास खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। नारद जी बोलते क्या विचित्र जगह यार, हम लोग इतना पास में अभी बह के आए और इसमें इतना सुंदर गांव, अतिथि देवो भव। एक अतिथि जो बगैर तिथि के आता है उसको अतिथि बोलते हैं भाई देव, अपॉइंटमेंट के साथ आता है वो अतिथि नहीं होता है, जो बगैर तिथि के कैसे घूमता फिरता पहुंच गया तो अतिथि होता है। तो अतिथि को भगवान का रूप देखना चाहिए और वहां सब उनका स्वागत करा गया और बोलते हैं आइए महाराज जी अब आप हमारे राजा हैं, कहां आ गए आप हमारे राजा। बोलते हैं महाराज जी हमारे वहां परंपरा है कि यहां पे राजा मरने के बाद जब भी कोई नया आदमी इस गेट से एंटर करेगा ना उसको हम लोग राजा बना देते हैं, ऐसे परंपरा है हमारे बुजुर्गों ने ऐसे रखा है सिस्टम। अब किसी को अपनी आइडेंटिटी अभी तक बताई नहीं थी, हम वो नारद जी हैं देव ऋषि नारद एक्सेट्रा एक्सेट्रा इटरनल ब्रह्मचारी और ये सब। तो बोला भाई ठीक है नारद जी, अपने मनी मन बोला कि भाई बनाए जा रहे हो भगवान की इच्छा है थोड़ी देर चलो अच्छा राजी कर देते हैं। बन गए राजा, राजा बन गए तो नारद जी के इतिहास में जीवन में ये भी कहानी आती राजा नारद, किसी ने सुना है क्या? वो हुआ और नारद जी बन गए। फिर उसके उपरांत फिर वहां के बुजुर्ग लोग आए बोलते हैं महाराज जी राजा के लिए थोड़ी होता है। बोला क्या मतलब? बोलते आप समझदार हैं, हम कन्या भी देख के आ गए, कब जो है मुहूर्त निकाला जाए। बोलते भैया विचित्र नगरी है तुम्हारे विचित्र सिस्टम में, हम क्या बोलते जब करना है कर देना। तो नारद जी की शादी हुई। ये कहानी आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होगी, ही सुनो आप। तो नारद जी की बाकायदा शादी धूमधाम से हुई और रानी साहिबा आ गई और वहां पे एक अच्छा राज्य चल रहा था। तो उसके बाद वहां पे जो है कुछ और प्रॉब्लम हो गई, जिसके बाद फिर बड़े बुजुर्ग लोग आए बोलते हैं कि नहीं नारद जी तो उनकी पत्नी दरअसल शांत हो गई। पत्नी जब शांत हो गई तो बुजुर्ग लोग आए बोलते महाराज जी आपने सती सुना होगा आपको सता बनना है। बोला सता क्या होता है? बोलते सता होता है कि पत्नी की आप जो भी उनकी क्या बोलते हैं लकड़ी वकड़ी रखते हैं चिता, तो चिता में आपको जिंदा बैठना। अब नारद जी दुनिया भर के शास्त्र प्रमाण ढूंढे कि सता होता ही नहीं है भाई, लेकिन कौन सुने? उस विचित्र नगरी में आए हुए हैं, विचित्र सिस्टम है, तो वहां बोलते हैं सता होता है। यहाँ पे बेचारे भागने के चक्कर में अभी तो खुशी से राजा बने बैठे हुए थे, धर्म का राज्य अच्छा राज्य चला रहे थे, लेकिन फिर जब सता बनने की बात आई तो किसी तरह से भागने का विचार कर रहे थे। लेकिन वो जो भी परंपरा थी वो लोग जानते थे ऐसे सता वाले जो लोग भागने चक्कर में रहते हैं तो गार्ड डबल कर दिए गए थे, कोई गुंजाइश नहीं भागने की। पूरी तैयारी करी, चिताविता लगाई गई, तैयार करी गई, उनकी पत्नी की बॉडी रखी गई और नारद जी को फाइनली कहा कि जो डुबकी मार के आओ यमुना जी के तट पे डुबकी मारो जाके, वहां जाओ और फिर आपका टीका वीका लगाया जाएगा, आपको नए कपड़े पहनाए जाएंगे और फिर बैठना जाके उसके ऊपर। अब नारद जी ने वो तो फंस गए, बोला आज तो नारद जी गए, इस जीवन की लीला लगता है समाप्त हो गई। तो जहां पानी में गए प्राणायाम करते हुए ऐसी लंबी सांस ली, पानी के अंदर से घुस के निकले गए वहां से, और उस समय भगवान की कृपा से फिर लहर आई। एक लहर उनको याद है पहले आई थी, वो कहां से कहां ले आई नो मैन्स लैंड में। फिर यहां की एक लहर आई और नारद जी इस बार खुशी से बहने लगे, ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी जमीन को, बह जाओ यार जितना लंबा बह सकते हो बह जाओ। तो ये जो है बहते बहते नारद जी थोड़ी देर बाद उन्होंने जिस समय अपनी मुंडी बाहर निकाली, पहले तो देखा कोई गांव वाले तो नहीं है, कोई चिता नहीं, कोई चिता नहीं, ठंडी सांस ली और आराम से बाहर और किनारे देखा है कि भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े। बोला ये कहां से आ गए? बोला भगवान के आते समय जल्दी भाग लो, इस समय आग भी निकल लो, फंसे हुए। अब भगवान मुस्कुराए, बोलते नारद जी हो क्या गया है? बोलते भगवान सब बताएंगे, सब दूर निकल लेते हैं। तो वहां तट पे गए, फिर उनको सरंगी विचार आया, एक बड़ा रिलैक्स मूड में खड़े हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ उनके अंदर शंका हुई कि हो सकता है इन्हीं की करामात हो। तो रुके, उनसे पूछा भगवान अब भाग क्यों ले रहे हो? हम बता रहे हैं इमरजेंसी आ गई, भाग लो, आप धीमे धीमे भटक के जा रहे हो आराम से। तो भगवान बोलते हैं कि नारद जी देख लिया। नहीं, क्या देख लिया भगवान? बोलते आप ही ने तो बोला था कि माया क्या है दिखा दो, ये माया का सैंपल था। उसने माया का सैंपल बोलते हैं, कभी तुमने समय सपा? तो उनको सडनली फ्लैश हुआ कि सब इनके चक्कर। बोलते हैं हम लोग अभी नारद जी यहीं पे खड़े हुए थे और एक मिनट भी नहीं हुआ होगा, सोच लो दो चार मिनट हो गए होंगे और क्या। ये दो चार मिनट के अंदर आपको क्या अनुभव हुआ? तो पहली बात तो भगवान कोई दो चार मिनट नहीं हुए, तो वर्षों की कहानी है, शादी ब्याह करके आ रहा हूं। राजा बन के आ रहा हूं, राजा हम बने थे, शादी हमारी हुई थी, तो मरते मरते बचे भगवान। भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ नारद जी यही हमारी माया है। माया उसको बोलते हैं जो होता नहीं है लेकिन एक क्षण ऐसा अनुभव हो जाता है कि आज तो इट इज वेरी मच देयर। भगवान सही बोल रहे हैं कि केवल थोड़े मिनट हुए हैं। उसने हमको क्या चक्कर है, मैं झूठ बोल लेगा? देखो सूर्य देवता अभी भी अस्त नहीं हुए हैं, हम लोग आए थे कितने बजे और अभी देखो सूर्य देवता कितना टाइम है। ये केवल कुछ क्षणों में हमारे मन के अंदर क्या क्या अनुभव हो जाता है। आपको पता है जो हम लोग के सपने होते हैं ना रात को कितने लंबे होते हैं, हम लोग सपनों में तो वर्षों का अनुभव कर लेते हैं लेकिन ढाई मिनट के अंतर्गत ज्यादातर सब सपने खत्म हो जाते। ऐसा हमने सुना है, किसी के ज्यादा हो जाते हो, किसी थोड़े कम हो जाते होंगे, एवरेज किसी ने निकाल के बताया कि जो बड़े विविड सपने, बाकी दूसरे भी सपने होते हैं, स्लीप को कैटेगराइज करा जाता है आंखों की पलकों के जो है ना मूवमेंट से। ये जो अनेकों एप्स होते हैं ना जो हमारी स्लीप को मेजर करते हैं, उनका कैटेगराइजेशन ऐसा होता है। तो डीप स्लीप जो विविड होती है स्लीप, वो बड़ी छोटी होती है। तो ये आपको थोड़े से क्षणों में वर्षों का अनुभव आप कर लेते हैं, इसी को माया बोलते हैं। हमारे थोड़े से सपने के अंतर्गत हम लोग एक नई देश और काल को उत्पन्न करते हैं। हमारा जो काल का यहां पे दायरा है, हमारे देखिए जीवन ही कितना होता है, मैक्सिमम 100 साल आदमी जिए, घर 100 साल जिए, आजकल तो एवरेज चेंज हो चुका है, अभी तो 70-80-85 जी लिए तो हो गई इनिंग्स पूरी, अब आगे सब बोनस है। और इसी के अंतर्गत एक दिन आप वहां पे वर्षों का अनुभव करते हैं. सो द टाइम स्केल, द टाइम एंड स्पेस ऑफ ड्रीम कंप्लीटली अलग होता है. वहां की दुनिया अलग होती है, वहां का टाइम स्केल अलग होता है. तो देश काल जो उत्पन्न कराया जाता है, सपने की पूरी दुनिया सपने के टाइम और स्पेस में होती है. तो यहां आचार्य बोलते हैं कि ये माया कल्पित देश काल करना, ये माया शक्ति से ही वो देश काल क्रिएट होता है और ये पूरी दुनिया सामने प्रकट हो जाती है. एंड हु इज द आर्किटेक्ट? योर ओन थॉट. तुम्हारे जो मन के सपने थे, तुम्हारी ख्वाहिशें थी, वो ही सपने का बेसिक प्लान ऑफ एक्शन होता है. और ये सामने पूरी दुनिया क्रिएट हो जाती है. यहां तक तो जो है उन्होंने सिंपल बात बताई, कोई बहुत ही विचित्र नहीं है. आगे वो बोलते हैं माया वीव विजृंभ यद्यपि महायोगी योगी वह स्वेच्छया. ये जो मन के अंदर विचार है और विचार का माया के द्वारा प्रकट है, इसी माया शक्ति से पूरी दुनिया सामने प्रकट हो गई है. बोलो पता है इसको हम लोग किस प्रकार से देखें? ऐसा लगता है कि कोई एक मायावी बोलते हैं जादूगर, एक किसी जादूगर के द्वारा मायावी इव एज दो लाइक अ मैजिशियन, जैसे कोई जादूगर यहां पे दम उसने अपनी डंडी जो है वो घुमाई और सामने जो है कुछ प्रकट कर दी, दिव्य सी चीज सामने उत्पन्न कर दी एक क्षण में. सिर्फ कल्पना भी उसकी और माया भी उसकी. पहले विचार करो उसने और फिर अपनी ही माया शक्ति के द्वारा सामने चीज प्रकट कर दी. पूरी जो सृष्टि है, पूरी दुनिया है, एक जादूगर के जादुई प्रस्तुति ही है. आप इस प्रकार से देखिए कि इस पूरी दुनिया को ईश्वर की माया ने बनाया है. भगवान कृष्ण गीता के सातवें अध्याय में खुद कहते हैं कि अर्जुन ये पूरी दुनिया हमारी माया के द्वारा सब बनाया है और हमारी माया से तुम पीछा छुड़ाना, इससे निकलना ये इजी काम नहीं होता है. और ये बात नारद जी से अच्छा कौन जानता है? नारद जी तो बच गए यमुना जी की कृपा से, ऐसे टाइमली लहर आ गई है और ऐसे भागे निकलने के बाद कि वो सता बनाने वाले लोग पकड़ ना ले हमको. इस प्रकार से वो सब अनुभव हो रहा है. ये सब अनुभूति एक जादुई शक्ति के द्वारा. विचार करना और विचार कर क्रियान्वयन करना, दोनों स्टेजेस क्रिएशन के, ये सब इसी मायावी के द्वारा करे गए हैं. जैसे हम सुना रहे थे ना वो जादूगर की कहानी, अंतःकरण शुद्धि वाली, सबसे मन साफ करा गया, काले हृदय को गोरा करा गया, केवल सर्फ के अंदर घोल के नैपकिन से साफ करके हार्ट का रीइम्प्लांट कर दिया गया था. जादू शक्ति, उसका मन का विचार, उसकी एक क्रिएटिव एक प्रेजेंटेशन के बारे में आइडिया और आइडिया का इंप्लीमेंटेशन, बाकी सब बिल्कुल ही आश्चर्यचकित बैठे हुए हैं अवाक. और हम लोग बड़े 30 मार खां बन रहे थे कि हम तो मायावी लोग सब जानते हैं, माया शक्ति से परे जा सकते हैं. हम खुद मूर्ख बन रहे थे, आंकड़े में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था. ये माया शक्ति बड़ी विचित्र है. इस पूरी दुनिया को देखने की ये दृष्टि हमको दी जा रही है। इस दुनिया को माया का प्रेजेंटेशन देखो, जो भी ये विविधता देखो, जब भी यहां की सुंदरता देखो भगवान को नमन करो। वाह भगवान, क्या बात है। गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान यही शिक्षा देते हैं कि अर्जुन ये पूरी दुनिया की जब जब तुम विभूतियां देखो। 10वें अध्याय का क्या नाम है? विभूति विभूति योग के अंदर हम लोगों को बताते हैं कि जो भी ग्लोरीज देखो तुम दुनिया, नदी नाले पहाड़ इंसान पक्षी फूल भावना प्रेम सुंदरता कुछ भी देखो, एक ये मन में विचार लाओ इस सृष्टि परमात्मा की है। हे भगवान, मां तुझे सलाम, आपको नमन है। हे जगदीश्वर, हे जगन माता, ऐसी सुंदर चीज बनाई आपने। सदैव ही अपने जीवन में कठान बांधो कि भगवान को नमन करा करो। और बाकी तुमको डिटेल सीखना हो तो बोलते हैं फिर ये सब यहां बताए हुए हैं। किसी भी क्रिएशन में दो स्टेज होते हैं, एक सीड फॉर्म होता है, पहले प्रॉपर सीड फॉर्मेशन होता है, मन के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, मन में बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। जितनी मन के अंदर क्लैरिटी होगी उतना प्रेजेंटेशन इजी हो जाएगा। आर्किटेक्ट को अच्छा प्लान दोगे तो अच्छा घर बन जाएगा, कंफ्यूज प्लान दोगे तो कंफ्यूज क्रिएशन होगा। तुम्हारे प्लान्स के ऊपर सब निर्भर होता है। स्टेज नंबर 1 प्लान का पूरा क्रिएशन फॉर्मेशन है, स्टेज नंबर 2 द इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो वो कार्य माया शक्ति कर देती है और ये इनके मन के विचार मात्र है। ये दोनों चीजें एक कॉस्मिक माइंड के अंतर्गत का खेल है। दैट इज हाउ वी लुक एट द क्रिएशन। तो या तो इसको इस दृष्टि से देखो कि माया वी इवर, जैसे एक जादूगर के मन के अंदर की यह पूरी खेल है, या महायोगी इवर। महायोगी वो उस कहानी की तरफ हम लोगों का ध्यान ले जाता है जो त्रिशंकु की कहानी थी। त्रिशंकु के पास ऐसा सामर्थ्य था कि एक नया स्वर्ग ही बन गया, पूरी दुनिया क्रिएट कर दी। ऐसे योगी लोग थे तो उनके पास योगिक पावर थी, शक्ति थी, कुछ भी बना देते थे। अरे पुराने समय हमारे राक्षसों का बहुत पावर हुआ करती थी। रावण जो है एकदम अपने आप को भिक्षुक बना देता है, शकुन सूरज सब वैसी बन जाती है मोमेंट में। हनुमान जी कहीं पर भी जो है भिक्षुक बन गए। भगवान राम को मिलने के लिए गए तो ब्राह्मण रूप धारण कर लिया, और कपट मुनि के पास गए तो वहां पे ऋषि का रूप धारण कर लिया, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। ये लोग चुटकी में कहीं पे जो है वो मरीच हिरण का रूप धारण कर लिया। तो इन लोगों के पास क्या शक्ति होती थी कि कोई भी रूप धारण कर लिया। तो ऐसी शक्तियां होती हैं, हम खुद अपने आप को किसी रूप में रात को भी सपने में क्रिएट कर सकते हैं। वो शक्ति हम सब लोगों के मन में है, उसी से तो सपना देखते हैं। तो या एक जादूगर की तरीके से या एक महान योगी की तरीके से, दोनों केसेस में एक विचार आता है और विचार का एग्जीक्यूशन माया शक्ति के द्वारा हो जाता है। अब देखिए क्या बोलते हैं इतनी कहानी बताने के बाद। मायावीव विजृंभयत्य महायोगी इव यह स्वेच्छया, जो अपनी इच्छा मात्र से दैट कॉन्शियसनेस दैट गॉड दैट डिविनिटी जिसके मन के अंदर पूरे दुनिया का विचार आया और जो अपनी स्वेच्छा से ही अपनी माया को वील्ड करते हुए उसने मैनिफेस्टेशन कर दिया है। जो वो है तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम्। वो ही हमारे गुरुदेव है। दैट इज हाउ आई लुक अपॉन माय गुरु। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। क्या अमेजिंग यहां से थॉट फ्लो है। इस पूरे क्रिएशन के रहस्य को जानते हुए, और कितना लॉजिकल है ये, कोई भी क्रिएशन इट इज एन इफेक्ट, इट हैज टू हैव अ कॉज, और कॉज सदैव सीड फॉर्म में रहता है, और सीड फॉर्म में ही क्रिएशन की वास्तविक प्रारंभ होता है। अगर कोई व्यक्ति ने बढ़िया कोई क्रिएशन कर दिया तो समझ लो उसके विचार के अंदर कितनी क्लैरिटी है। उसके विचार में एक पहले संकल्प स्पष्ट हुआ था, और जैसा संकल्प होगा आपकी दुनिया की लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। और एक बार आपके अंदर बहुत ही क्लियर संकल्प हो गया, फिर उसका एग्जीक्यूशन आपकी ही शक्तियों के द्वारा हो जाता है। यू कैन डू दैट, जिसने ये पूरी दुनिया ऐसी बना दी है, वो परमात्मा तत्व से जो एक हो गया है, हमारे गुरुदेव परमात्मा से एक हो, इसीलिए परमात्मा और हमारे गुरु में कोई भेद नहीं। अब अनेकों लोग कबीर दासी वगैरह बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आरती जो गोविंद दियो दिखाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। वेदांत के स्टूडेंट से पूछो ये चौपाई गलत है, ये दोहा गलत है। गुरु और गोविंद अलग अलग नहीं खड़े होते हैं। जो गुरु अभी गोविंद से अलग है वो काय के गुरु है, वो बड़े गुरु है, वो बड़े चालू है। गुरु शब्द इसके लिए भी होता है, क्यों भाई गुरु आजकल बड़े गुरु जो है तेज हो गए हो, तो गुरु शब्द इसके लिए भी होता है कि वो बड़े बड़े चालू आदमी है। अब गुरु अगर गोविंद से अभी तक अगर अलग खड़े हुए हैं तो काय के गुरु हैं, वो गुरु किसी काम के नहीं है। वो तो पता नहीं कौन सी यहां पे अपने इस दोहे के अंदर बात कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े है? हम बड़े कंफ्यूजन में किसके पैर पहले छुए हैं, तो बोलते हैं यार तुम्हारे गुरु बेकार है। हमारे गुरु के साथ हमको अगर ये दुविधा हो कि गुरु के पहले पैर पड़े कि भगवान के पड़े, तो बोलते हैं तुमको अभी तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारा ये भेद ये द्वैत ये बुद्धि नहीं खत्म हुई है। हमारे गुरु ही वो भगवान है, जिन्होंने अपने मन में दुनिया का संकल्प करा और अपनी ही माया शक्ति से उसका प्रेजेंटेशन कर दिया है। दिस अमेजिंग ब्यूटिफुल वर्ल्ड इन दिस टाइम एंड स्पेस कंटिन्यूम, जिसने ये करा है ना, दैट इज माय गुरु। और ये हमारा प्रणाम, ये हमारा सलाम उन गुरु के चरणों में है। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा। बहुत सारे आपने गुरु के स्तोत्र सुने होंगे, लेकिन दक्षिणा मूर्ति देखो क्या लेवल का है, क्या क्लास है इसका, क्या स्टैंडर्ड है इस दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र में गुरु की वंदना का। अनपैरेलल्ड ब्यूटी। तो ये दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र का श्लोक नंबर 2 था। आप लोगों ने खाने के बाद इसको पूरा झेल लिया बगैर सोए, आपकी तारीफ है। अब जो सो लिया हो अलग बात है, उसको मत बोल खोलो। लेकिन एक गंभीर बात है, बड़ी हाई क्लास चीज है। आप सुनने का भी सौभाग्य रख रहे हैं, आपकी किस्मत है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर। तो कौन है दुनिया में, अपने देश में भी कितनों को ये पता है, दक्षिणामूर्ति पता है क्या? अनेक तो दक्षिणामूर्ति भी नहीं पता है। तो इतना बढ़िया स्तोत्र है, अमेजिंग। तो ये हम लोगों का श्लोक नंबर 2 था। अब कल सवेरे के सेशन में श्लोक नंबर 3 देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती। हर हर महादेव। नर्मदे हर।